मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 9 दिसंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि शुक्रवार के एपिसोड में मैंने दो कलेक्टरों की विदाई के बारे में आप सबसे कुछ चर्चा की थी और उसके माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो हमारा जीवन है उसमें हमारा पद अहम नहीं होता कि हम किस पद पर हैं, बल्कि अहम होता है कि हम किसी भी पद पर रहें, पदों पर न भी रहें, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ बातें जाननी भी चाहिए हैं और दरअसल आज के इस एपिसोड में मैं उन्हीं के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हालांकि आप लोगों ने पूछा है मेरे अपने बारे में, लेकिन उसके माध्यम से मैं जीवन के सिद्धांत की बात करूंगा। और खासकर ये जो आज का एपिसोड है ये अभिभावकों के लिए यानी पेरेंट्स माता पिता के लिए बहुत मुझे लगता है कि उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों में वो अपने सपनों को देखना चाहते हैं, उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो अपने बच्चों की शुरुआत में किस तरीके से वो परवरिश करें, शायद आज के इस एपिसोड में उन्हें कुछ ऐसा मूल मंत्र मिल जाए। तो जो जानना चाहा है बहुत से मेरे प्रिय श्रोताओं ने, उनका मूल प्रश्न यह है कि सर, जब आपने इन दोनों कलेक्टर्स की विदाई देखी तो क्या उसके बाद आपको लगा कि आपको भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो मैं बस इसी का जवाब देने जा रहा हूं और इसके माध्यम से हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज पर बात करेंगे। देखिए, जब मैंने ये बात कही है कि मैंने दो कलेक्टर्स की विदाई देखी तो उस समय जो मेरी उम्र थी लगभग 20 साल के करीब पहुंच गई थी, 20 साल से भी बल्कि मैं थोड़ा सा अधिक ही करना चाहूंगा, लगभग 22-23 साल की मेरी उम्र हो चुकी थी, है ना। तो इसे आप एक तरफ रख दीजिए, यानी कि यूं कह लीजिए कि मैं टीन एज क्रॉस कर चुका था और कुछ न कुछ मस्तिष्क में परिपक्वता आ गई थी। यानी कि अगर हम अपने दिमाग को एक जमीन मान लें तो जमीन थोड़ी सी तो ठोस हो गई थी, उतनी पोली नहीं थी, उतनी नर्म नहीं थी, है ना। उसके ऊपर थोड़ी सी पपड़ी जम चुकी थी, अपने विचार बन चुके थे, वातावरण में रह रहे हैं उनके प्रति अपनी धारणाएं बन गई हैं, अच्छे बुरे का ख्याल अपने ढंग से आने लगा है, विश्लेषण करने लगे हैं, तो इस तरह से उसका निर्माण हो गया था। तो एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने जो आईएएस बनने का फैसला किया डेफिनेटली उस घटना से नहीं किया, ये फैसला उससे काफी पहले हो चुका था। और वो कैसे हुआ उसके माध्यम से मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे करूंगा। मैं दो घटनाओं की खासकर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए कि जो बालक होता है उसके दिमाग में कैसी चीजें बैठती हैं या कैसे कोई एक छोटी सी चीज बीज के रूप में उसके अंदर चली जाती है और फिर वह बीज धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। यहां याद रखिए कि एक है हमारा माइंड और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, दोनों में बहुत फर्क है। माइंड का मतलब तो हुआ आप कह लीजिए कि जमीन की ऊपरी परत, कि आपने बीज डाले वो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है कि जमीन की आपने अच्छी जुताई गुड़ाई कर ली है गहराई में जाकर के और उसमें आपने बीज डाल दिए हैं। दोनों में बहुत फर्क होगा। जो ऊपर पड़े हुए बीज हैं, हो सकता है कि इसमें से कोई बीज उगे ही नहीं, कुछ चिड़िया खा जाएं, कुछ जानवर रौंद दे, कुछ सड़ ही जाएं, कुछ सूख जाएं, जो भी होगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि जो जमीन के अंदर जो बीज चला गया है उसकी दो सबसे बड़ी खासियत होती है। पहला तो यह है कि वो उगेगा ही उगेगा। दूसरा यह है कि उसको उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अगर वो उगकर आ गया तो फिर उसको पेड़ या पौधा बनाने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो जो ऐसी जड़ें वाले जो पौधे होते हैं वो तो अपना जीवन रस पे धरती के कण कण से खींचते हैं। यानी कि अगर हम इसे जीवन पर अप्लाई कर दें तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज पड़ा रहता है या जो हमारी इच्छाएं होती हैं या वहां से जब हम फैसला करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कि मुझे यह बनना है, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई आपको उत्साहित करता रहे, कोई लगातार आपको टोकता रहे। आप ऐसे वातावरण की तलाश करेंगे जहां आप लगातार अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। नॉट एट ऑल। चूंकि आपकी ये जो इच्छा है, बनने की जो भावना है, विचार है, ये सबकॉन्शियस माइंड से आया हुआ है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही उन चीजों की तलाश कर लेगा। आप बाहर से कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि बाहर से कुछ छिड़काव उड़काव हो जाए तो मेरे जो पत्ते थोड़े से नरम पड़ गए हैं, सूख रहे हैं, इनमें थोड़ा टटकापन आ जाएगा। नहीं नहीं, वो अंदर से ही वो सच पूछे तो जीवन रस खींच रहे हैं। तो दोस्तों, यहां हमारे अभिभावकों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वो अपने छोटे बच्चों को इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराएं, इस तरह की बातें उनके दिमाग में डालना शुरू करें कि वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएं। और इसके लिए 7-8 साल की उम्र तक ही आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, मनोवैज्ञानिक। उसके बाद फिर उसका जो प्रभाव है वो धीरे 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 कम होने लगता है। हालांकि देखिए, जीवन में बदलाव तो किसी भी चरण में आ सकते हैं हमारे जीवन के, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य जो सिद्धांत है वो यही है कि 7-8 साल तक हमें अपने बच्चों की बहुत अच्छे से एक एक चीज पर ध्यान देकर के परवरिश करनी चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी 2 घटनाओं पर। पहली बात तो यह फ्रेंड्स कि हम लोग जिस गांव में रहते थे, उस गांव में जमींदार थे, जिनको मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लाल साहब उनको कहते थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही हैंडसम दिखते थे, गोरे चिट्टे, अच्छे लंबे और बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही प्रभावशाली थे। उनका गांव में इतना दबदबा था कि वो सारे फैसले, वही जुडिशरी थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन थे, मैं ना 70-72 की बात कर रहा हूं, वही सब कुछ थे, उससे भी बल्कि पीछे की मैं बात कर रहा हूं, मैं 65-66 की बात कर रहा हूं। तो जब मैं उन्हें देखता था तो मुझे लगता था कि यार कुछ आदमी को ऐसे ही बनना चाहिए। देखिए, जो कहते हैं वो हो जाता है, गांव के लोग इन्हें इतना सम्मान देते हैं तो सम्मान की इच्छा तो सब में रहती है, तो अब ये सम्मान मिले कैसे। तो उस समय लगता था कि नहीं, आपको अधिकार संपन्न होना चाहिए। अब भले ही वो किसी पद पर नहीं थे, जमींदारी थे, लेकिन अधिकार संपन्नता के कारण उनको सम्मान मिलता था। लेकिन वहां एक बात और थी कि मेरे दादाजी उनके अच्छे, आप कह लीजिए कि मित्र जैसे थे। मेरे दादाजी का कोई मतलब पद नहीं था, लेकिन सम्मान उनका भी बहुत था, लेकिन जमींदार से कम। यानी कि मेरे दादाजी खुद जमींदार साहब का बहुत सम्मान करते थे, जमींदार साहब दादाजी का सम्मान क्या प्यार करते थे, उनसे उम्र में छोटे भी थे मेरे दादाजी। तो फिर मेरे दिमाग में कभी कभी घिचपिच हो जाता था कि यार फिर मेरे दादाजी को तो बिना किसी पद के भी सम्मान मिलता है, लोग इन्हें बल्कि प्यार करते हैं। जमींदार से तो लोग डरते थे, लेकिन मेरे दादाजी से लोग प्यार करते हैं, तो फिर सच क्या है। तो यहां से मेरे अंदर एक द्वंद्व की शुरुआत हुई, पद और कार्य, पद और कार्य के भी फिर मेरे दादाजी का क्यों सम्मान होता है। सन 1965-66 में मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था। अब हुआ यह कि मेरे दादाजी के पास उसमें जो सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें होती हैं, सस्ते अनाज की जो दुकानें होती हैं, उसका लाइसेंस मिला हुआ था कि ये गांव में वो सस्ते अनाज वो लोगों को उपलब्ध कराएं। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, जो बिल्कुल यंग थे, जो 29-30 साल की उम्र के थे, और वही हमारे घर के सच पूछे तो आर्थिक आधार भी थे। अब आप सोचिए कि इतने यंग पुत्र की मृत्यु पर पिता का क्या स्थिति होगी। तो हमारे मेरे दादाजी की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि वो पागल हो गए हुए हैं, जो भी है। तो ऐसे में उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के दुकान वगैरह का अनाज वगैरह लाना बंद सा कर दिया, वो गुमसुम से रहने लगे। तो हुआ क्या कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस समय जो कलेक्टर थे वो आए और जमींदार साहब के यहाँ ही उनका दरबार लगा। तो गांव वालों ने शिकायत की कि साहब ये हमें अनाज नहीं दे रहे हैं। तो मेरे दादाजी से पूछा गया तो मेरे दादाजी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की चूंकि मृत्यु हो गई थी तो मैं बिल्कुल असहाय हो गया हूं और मेरा दिमाग बिल्कुल वो हो गया है, तो मैं अभी ये करने की स्थिति में नहीं हूं। तो इसको लेकर के कलेक्टर साहब ने उनको बहुत डांट लगाई कि इससे क्या हो गया। फिर जब उनका इससे क्या हो गया, तो अब बचपन आई तो था मेरा, मैंने सोचा कि यार बताइए, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मेरे दादाजी को ये डांट रहे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा बन गया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा ही बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर जो बीज आया सबकॉन्शियस माइंड में, वो वहां से आया। तो दोस्तों, इस घटना के माध्यम से जो मैं सिर्फ एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, बच्चों की परवरिश को लेकर के देखिए कि आप उन्हें कितना अच्छा वातावरण उपलब्ध करा पाते हैं। पक्का जानिए कि अगर वातावरण उनको अच्छा मिला तो जीवन में बहुत बेहतर की ओर ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त करूं, एक सूचना है। बहुत से जो प्रिय श्रोता हैं ईमेल के जरिए जानना चाहते हैं कि मैडम प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर क्या है। आप जानते हैं कि मैडम प्रीति अग्रवाल आपके लाइफ मैनेजमेंट पर आपको सलाह देते हैं। आपके जीवन की अगर कुछ समस्याएं हैं तो आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। याद रखिए जो बात करने का समय है वो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच तक का ही समय अगर आप रखें। उनका मोबाइल नंबर है डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9644624449। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।